सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धादद्धट्ठमला विशुद्धबुद्धिये लद्धसौवत्था तिहुवणशिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सौवे तिहुवनभवनपसर्य पच्छक्खवबोहकिरणपरिवेढो उयो वियणत्थवणो अरहन्तदिवायरो जयौ तिरयणथगणिहाये णुत्तारियमोहसेण्णशिरणिवहो आयिर्यराउपशिवौ परिवालिय भवियजियलो अण्णाणन्धयारे अणोरपारे भमन्तभवियाणम् उज्जोजेहि कौ पश्यन्तु सया उवच्छाया दुहत्युवति सा विनडिय तिहुवणभवियाणसुठुरायेण परिठवियाधमपवा सुअजलवाणपयाणेन सन्धार्यशीलहरा उत्तार्यचिरपमाददुःशीलभरा साहूजयन्तु सौवे शिवसुहपः सण्ठिया हुनिगलियमया। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह नौवीं पुस्तक जो चतुर्थ खंड है उसमें कृति अनुयोग द्वार की यहाँ चर्चा चल रही है। उसमें हमारा दूसरा सूत्र चल रहा है। पहला सूत्र था नमो जिनाणम और दूसरा नमो ओही जिनाणम, अवधि जिनों को नमस्कार हो, ऐसी वहाँ बात चल रही थी। उसमें अवधि ज्ञान संबंधी हम बातें देख रहे थे। अवधि ज्ञान के तीन भेद, देशावधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान। तो उसमें से अभी हम देशावधि ज्ञान की बात चल रही थी। उसमें देशावधि ज्ञान कितने द्रव्य को जानता है, यानी कितने परमाणुओं के स्कंध तक, सूक्ष्म तक जानता है, कितने अधिक से अधिक क्षेत्र तक जानता है, कितने पूर्व और पश्चात वाले काल तक को जानता है, और कितने भाव यानी कितनी पर्यायों को जानता है। जो जाना हुआ पुद्गल स्कंध है उसकी कितनी पर्यायों को जानते हैं, इस तरह से द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से उसकी मर्यादा तो होती है। तो जघन्य में जघन्य बताएंगे, फिर उससे पावरफुल अवधि ज्ञान, उससे पावरफुल, उससे पावरफुल, ऐसे देशावधि अवधि ज्ञान के भी बहुत सारे भेद हैं। उन विकल्पों को देखते समय हमने देखा था कि जघन्य में जघन्य द्रव्य से हमने शुरुआत की। जघन्य द्रव्य का अर्थ यानी जघन्य अवधि ज्ञान का द्रव्य कहेंगे, तो वो कितना था हमने देखा था कि विसरसोपचय सहित औदारिक के जो परमाणु शरीर है, औदारिक शरीर है, उसको लोक से भाग दिया था, तो उसमें जितने परमाणु है उनके स्कंधों को वहां तक के कम से कम उसकी लिमिट लेना, उतने तक जानता है, उससे छोटे वाले स्कंधों को नहीं जानता, उसको कहा था देशावधि का वो जघन्य द्रव्य या जघन्य देशावधि का द्रव्य। क्षेत्र में कितने क्षेत्र तक को जानता है, सबसे जघन्य अवधि ज्ञान। तो हमने देखा था सूक्ष्म निगोध लब्धि अपर्याप्त की जो अवगाहना है, जघन्य अवगाहना, उतने क्षेत्र तक को जानता है। काल में आवली के असंख्यातवे भाग इतने काल पूर्व और पश्चात तक को जानता है, और भाव में देखा यथायोग्य असंख्यात पर्यायों को जानता है। तो ये तो मिनिमम अवधि ज्ञान की, जो जघन्य अवधि ज्ञान की बात हुई। अब इससे आगे वाला जो अवधि ज्ञान का भेद है उसमें क्या क्या बातें होती है, तो द्रव्य की अपेक्षा जो भाव की अपेक्षा और द्रव्य की अपेक्षा समान वो वृद्धि होती है। भाव तो असंख्यात गुणा पर्यायों को जानता है और द्रव्य में अधिक अधिक सूक्ष्म 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 को जानने लगता है। तो द्रव्य में कैसे निकालना सूक्ष्म, तो विशिष्ट ध्रुव संख्या से जिसको हम ध्रुव भागहार कहते हैं उससे भाग देते जाओ तो आगे आगे वाले अवधिक ज्ञान का विषय रूप द्रव्य की बात आती है। तो द्रव्य की अपेक्षा दूसरा भेद, फिर तीसरा भेद, चौथा भेद निकालने के लिए उसी ध्रुव भागहार से भाग देते चले जाते हैं। ऐसे अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण द्रव्य के भेद बीत जाने पर क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होती है। दोबारा हमने देखा था कि द्रव्य की अपेक्षा से अवधि ज्ञान के असंख्यात भेद चले जाते। असंख्यात तो कितने, अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण असंख्यात। जैसे पहले इतने द्रव्य को जानता था, दूसरे नंबर का अवधि ज्ञान उससे छोटे स्कंद को जानता है, तीसरे नंबर का उससे छोटे ऐसे करते करते ये हम कहेंगे ये पहला विकल्प, विकल्प यानी भेद, दूसरा भेद, तीसरा भेद, चौथा भेद, पांचवा भेद। ऐसे अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण द्रव्य के भेद जब बीत जाते हैं तब जाकर क्षेत्र जो हमने सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना देखी थी उसमें एक प्रदेश की वृद्धि होती है, वहां तक को जानता है। दो प्रदेश की वृद्धि होने के लिए फिर और उतने ही अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण द्रव्यों के भेद बीत जाएंगे तब जाके एक प्रदेश और बढ़ेगा। इसलिए हरेक एक एक आत्म प्रदेश ने ये जो कितने क्षेत्र तक वो जानता है ना उसकी बात है। क्षेत्र में एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते द्रव्य के इतने सारे भेद बीत जाते हैं, यहाँ तक समझे। अब क्षेत्र में भी ऐसा समझ लो, क्षेत्र में भी ये पहले इतना क्षेत्र को जानता था, फिर एक प्रदेश और क्षेत्र बढ़ गया, एक प्रदेश और क्षेत्र बढ़ गया, ऐसे करते 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 अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्रदेशों की वृद्धि होती है तब जाके काल में एक समय बढ़ता है। अवली का असंख्यातवा भाग देखा था उसमें और एक समय बढ़ा, फिर और एक समय बढ़ेगा, फिर और एक समय बढ़ेगा। भाव में तो हमने देखा था भाव में तो असंख्यात गुणा 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 होता जाता। द्रव्य की और भाव की समान वृद्धि है, एक साथ दोनों बढ़ते हैं, यानी द्रव्य में सूक्ष्मता की ओर चला जाता है और भाव में असंख्यात गुणा पर्यायों को जानते चला जाता है। तो द्रव्य और भाव के असंख्यात असंख्यात यानी अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण विकल्प बीत जाते हैं तब क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होती है। क्षेत्र के एक विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, ऐसे अंगुल के असंख्यात वे भाग विकल्प बीत जाते हैं तब काल में एक समय की वृद्धि होती है। परंतु जैसे द्रव्य में और क्षेत्र में जो प्रपोर्शन है कि द्रव्य के इतने इतने विकल्प होने पर ही क्षेत्र एक प्रदेश बढ़ता है, वैसे ध्रुव वृद्धि क्षेत्र और काल में नहीं है। ये कल लंबी चौड़ी जो चर्चा समाधान हुआ था, शंका समाधान, उसमें यही बात उन्होंने बताई थी कि जैसे एक प्रदेश बढ़ गया, फिर दूसरा प्रदेश बढ़ गया, फिर तीसरा प्रदेश बढ़ गया, इस तरह से हमने देखा था कि अंगुल के असंख्यातवे भाग क्षेत्र उसका बढ़ जाता है या उतने उसके विकल्प हो जाने पर एक समय काल का बढ़ता है, परंतु कहीं कहीं पर ज्यादा भी हो जाती है वृद्धि। कहीं अंगुल के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र बढ़ने पर, कहीं अंगुल बढ़ने पर, कहीं संख्यात घनांगुल बढ़ने पर, कहीं जगत श्रेणी बढ़ने पर, कहीं तो जगत प्रतर बढ़ने पर उसमें एक समय की वृद्धि होती है। इसी कारण क्षेत्र बढ़ते 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 लोक तक पहुंचा और काल बढ़ते 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 उत्कृष्ट काल कितना है, एक समय कम पल्य, देशावधि का उत्कृष्ट काल कितना है पल्य में, एक समय कम, और देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र कितने क्षेत्र तक जानता है, तो पूरा लोक। ये जो उसमें जो डिफरेंस इतना आया वो इसी कारण आया है। और यही बात हमें 19 कांडकों के द्वारा भी देखी थी कि पहले कांडक में हमने शुरू किया था जघन्य क्षेत्र काल, अभी हमने जो बताया था पहले ही कांडक का उत्कृष्ट जो हमने देखा था उसमें भी हमने देखा था संख्यात्वा भाग, संख्यात्वा भाग, एक अंगुल का संख्यात्वा भाग और एक अवली का संख्यात्वा भाग। फिर दूसरे कांडक, तीसरे कांडक, जैसे हमने आठवें कांडक में देखा था कि काल तो हुआ था 15 दिन और क्षेत्र कितना हो देखा था, याद है, भरत क्षेत्र जितना। ये जो डिफरेंस आया था एक ही प्रोपोर्शन में सदैव बढ़ता तो ये ऐसा नहीं होता, क्षेत्र इतना बड़ा नहीं हो जाता। इसलिए क्षेत्र के बहुत ज्यादा विकल्प बीतने पर काल एक समय बढ़ाता। वहां शुरू में क्षेत्र के कितने विकल्प चले गए, अवली अंगुल का असंख्यात्व भाग, आगे चलकर अंगुल जितने क्षेत्र विकल्प बीतने पर एक समय बढ़ा, कहीं कहीं संख्यात घनांगुल बीतने पर एक समय बढ़ा, कहीं कहीं तो जगत श्रेणी जितने क्षेत्र के विकल्प बीतने पर एक समय बढ़ा। इसलिए काल की वृद्धि स्लोली हुई थी और क्षेत्र की वृद्धि के यानी अनेक विकल्प वहां चले गए, तब जाके काल एक समय बढ़ा था। शंकाकार की शंका इसी थी कि ये त्रैराशिक से अगर हम निकालते हैं तो जहां लोक प्रमाण क्षेत्र है तो वहां काल भी बहुत बढ़ना चाहिए था, और यदि काल की अपेक्षा त्रैराशिक मानते हैं तो इतना लोक जितना नहीं होना चाहिए थे, असंख्यात घनांगुल इतनी संख्या आनी चाहिए थी, उसकी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, उसको अभी उसकी भी बात करेंगे। अभी ये क्या है, हमने देखा ना, द्रव्य तो हर बार बढ़ते चले जाता है, बहुत बार बढ़ने पर क्षेत्र बढ़ता है। अभी मान लेते हैं हम चार चार की बात करेंगे, द्रव्य चार बार उसकी वृद्धि यानी चार विकल्प द्रव्य के बीतने पर क्षेत्र का विकल्प दूसरा होता है, वो एक से दूसरे नंबर पर आता है। द्रव्य जब चौथे से पांचवे में आया तब क्षेत्र पहले से दूसरे पर आया, काल तभी पहला ही चल रहा है, भाव का भी चौथे से पांचवे तक आ गया है, चौथे से पांचवे में भाव भी, क्योंकि द्रव्य और भाव एक साथ बढ़ते हैं। ये हम कहेंगे ये चार से पांच तक आया, एक से दो तक क्षेत्र चला गया, काल वही रहा और भाव भी वही रहा, भाव भी चार से पांचवा हो गया। अभी ऐसे करते करते जब ये 16 बार हुआ तब यहाँ 4 बार हुआ क्षेत्र, तो क्षेत्र जब 4 बार हुआ तो चार यानी ये 16 बार हुआ, ये 4 बार हुआ, काल अभी वही चल रहा है, 16 तक तो वही है और ये भाव भी 16 बार हो गया। यहाँ जब 16 से 17 होगा तब क्षेत्र है वो 4 से 5 तक आ जाएगा और तब जाके काल का दूसरा नंबर आएगा। यानी जब काल एक समय से बढ़ता है तब सब में वृद्धि होती है, काल पहले से दूसरे में आया तो क्षेत्र भी चौथे से पांचवे में आया और द्रव्य भी 16 से 17 में आ गया। जब जब काल की वृद्धि होगी तब तब सब में होगी, तो इसको कहते हैं समान वृद्धि। अब द्विचरम, ऐसे ये तो हर समय चलता ही रहेगा। द्विचरम का अर्थ है अभी हम जो उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव लेंगे तो उसमें अंत समय में जो समान वृद्धि हुई थी उसके पहले वाली समान वृद्धि लेनी एक साथ जब, यानी उसका अर्थ क्या है, समान वृद्धि कब होगी, जब काल में वृद्धि होगी, बराबर। तो काल जब अंतिम समय बढ़ता है उसके पहले वाला जब, यानी ये काल एक समय ही बढ़ गए, देखो अभी ये अंतिम वाला काल है, पल्ले में एक समय कम, उसके पहले वाला जो समय है, हाँ दो समय कम वाला, वो जब इस पोजीशन पे आया था उसके बाद कितना समय रहा अभी उत्कृष्ट में, एक ही समय बाकी है, तो इसको कहते हैं द्विचरम। ये द्विचरम पर आया तब यहाँ भी क्षेत्र का कोई विशिष्ट विकल्प था, द्रव्य का भी था, भाव का भी था, जो कुछ थे। इसके बाद काल का तो एक ही विकल्प बच गया है, क्षेत्र के कितने विकल्प बचेंगे, आवली के असंख्य, हाँ चार, अपनी भाषा में चार हम समझने के लिए, और द्रव्य के कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। ये द्विचरम समान वृद्धि इसको कहेंगे। इस यहां से हम पढ़ते 34 पृष्ठ पर जो हमने कल पढ़ा था, देखो ये शंका के ऊपर क्या लिखा है, इस प्रकार तब तक ले जाना चाहिए, तब तक यानी कभी कभी क्षेत्र के विकल्प ज्यादा चले जाते, कभी आवली का असंख्यात्व भाग, कभी संख्यात्व भाग, कभी आवली प्रमाण, और कभी नहीं आवली नहीं घनांगुल कहना था मुझे, आवली नहीं अंगुल कहते वहां, कहीं घनांगुल, कहीं संख्यात घनांगुल, कहीं असंख्यात घनांगुल, कहीं जगत श्रेणी वगैरह वगैरह, यानी क्षेत्र के विकल्प है, कभी ज़्यादा भी बीत जाते हैं, तब जाके काल में एक समय की वृद्धि होती है। तो ऐसे ही कहाँ तक समझना, तो लास्ट बट वन काल का समय जो है तहाँ वहाँ तक, क्योंकि वहाँ समान वृद्धि हुई थी, और उसके बाद काल का एक समय बाकी है उत्कृष्ट पहुँचने के लिए, तो शंका भी पड़ेंगे। द्विचरम समान वृद्धि किसे कहते हैं, ये कल पढ़ा था, फिर दोबारा पढ़ते हैं। तो कहते हैं जिस स्थान में चारों की यानी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, चारों की समान वृद्धि होती है, सब में वृद्धि होगी, उसकी समान वृद्धि ऐसी संज्ञा है। युगपत वृद्धि होती है, एक साथ हो रही ना, जब काल की वृद्धि होती है तो चारों में युगपत होती है, अन्यथा क्षेत्र की होगी तो काल की होगी ऐसी कुछ नहीं, परंतु जब क्षेत्र की होती है तो द्रव्य की और भाव की तो होती ही है। जब भी द्रव्य की वृद्धि होती है तब भाव की तो होगी, परंतु उस समय क्षेत्र की या काल की होगी ही ऐसी नहीं है। जब द्रव्य में 16 से 17 पॉइंट पर गए थे तब सबकी हुई थी, तो जब जब काल की हो रही है तब तब तो सभी में वृद्धि हो ही रही है, उसको युगपत कहा। उसमें चरम समान वृद्धि को छोड़कर उससे नीचे की वृद्धि द्विचरम समान वृद्धि है। चरम याने अंतिम, द्विचरम याने अंत से दूसरी, हाँ लास्ट बिट वन। उतना अध्वान जाकर वहां जो कुछ भी भेद है उसे कहते हैं, यानी उस पॉइंट पर क्या क्या बातें होती है उसको बताएंगे। द्विचरम पर, वहां द्विचरम समान वृद्धि से ऊपर, उसके पश्चात, द्विचरम समान वृद्धि हो गई अभी, अब वो काल विशिष्ट काल तक पहुंच गया है, उसके बाद कितने काल बाकी है, काल का विकल्प कितना है, अभी एक ही समय बढ़ेगा तो उत्कृष्ट देशावधि का काल प्राप्त हो जाएगा, तो उसके ऊपर कितने काल विकल्प है, तो उसका उत्तर है एक समय रूप एक विकल्प। काल का तो एक ही विकल्प है, क्षेत्र के बहुत हो गए और द्रव्य के भी ज्यादा हो गए, किंतु क्षेत्र विकल्प, अब पहले प्रश्न पूछ रहे कि कितना हो सकता है, तो पूछ रहे असंख्या श्रेणी अथवा संख्या श्रेणी मात्र अथवा जगत श्रेणी मात्र अथवा श्रेणी के प्रथम वर्गमूल मात्र अथवा द्वितीय वर्गमूल मात्र अथवा घनांगुल मात्र अथवा घनांगुल के संख्यात्वे भाग मात्र अथवा घनांगुल के असंख्यात्वे भाग मात्र क्या होते हैं या नहीं होते, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि, यानी अंत का जो समान वृद्धि के बाद जो क्षेत्र के विकल्प बाकी है, जब अंत में एक समय बढ़ेगा तब क्षेत्र के कितने विकल्प हो गए उस पोजिशन में, तो कहते हैं अंगुल के असंख्यात्वे भाग मात्र ही होते हैं। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट प्रथम कांडक में हमने देखे थे, काल एक समय बढ़ता है तो क्षेत्र में अंगुल के असंख्यात्वे भाग इतने विकल्प हुए थे स्टार्टिंग में, अभी अंत में भी ऐसा ही, द्विचरम के पश्चात वाला, यहाँ देखा ना हमने, इसके बाद काल में तो एक समय की वृद्धि होगी, तब क्षेत्र के विकल्प कितने हो जाएंगे, तो जो हमने शुरुआत में जो देखा था अंगुल का असंख्यात्वा भाग, जिसको हमने चार समझा था, कारण कि ऐसा आचार्य परंपरागत उपदेश है, अथवा उक्त क्षेत्र विकल्पों के विषय में ज्ञान नहीं है, क्योंकि तत्संबंधी युक्ति व सूत्र का अभाव है। सूत्र में ऐसा कुछ खास करके बताया नहीं है, फिर भी आचार्य परंपरा से ये जाना गया है, और युक्ति तो ऐसे हम नहीं लगा सकते कि जिसका उपदेश नहीं है। क्षेत्र विकल्पों से, यानी क्षेत्र विकल्प मान लेते चार हुए तो द्रव्य विकल्प उससे भी असंख्यात गुणे यानी 16 हो जाएगी ना, तो क्षेत्र विकल्पों से द्रव्य और भाव के विकल्प असंख्यात गुणे हैं। ये तो जैसे हमने स्टार्टिंग से देखा था, क्षेत्र में और द्रव्य में तो वही उतने ही प्रोपोर्शन रहेगा, पर और द्रव्य और जो भाव है वो तो समान रूप से उसके विकल्प होते हैं, जितने द्रव्य के विकल्प होंगे उतने ही भाव के भी विकल्प होंगे, द्रव्य में सूक्ष्मता की ओर स्कंद बढ़ रहा है और भाव में असंख्यात गुणा पर्यायों को जान रहा है। देखो क्षेत्र विकल्पों से द्रव्य और भाव के विकल्प असंख्यात गुण है। गुणकार कितना है? तो अंगुल का असंख्यातवा भाग है, क्योंकि अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र द्रव्य और भाव के विकल्पों के बीत जाने पर क्षेत्र में एक आकाश प्रदेश की वृद्धि होती है। ये तो बिल्कुल फिक्स है, परंतु क्षेत्र और काल के बीच में कभी ध्रुव है कभी अध्रुव वृद्धि होती है। क्षेत्र के विकल्प बहुत सारे कभी कभी बहुत बीत जाते हैं तब जाके एक समय बढ़ता है, और मिनिमम कितना बढ़ता है तो अंगुल का संख्या तो भाग इतना तो बढ़ता ही है। कभी कभी इतने सभी विकल्प होते हैं, यानी कभी कभी इतने भी होते, असंख्यात श्रेणी भी कहा ना, असंख्यात जगत श्रेणी इतना भी लिया, कभी कभी इतने क्षेत्र के विकल्प बीत जाते तब तक वो काल बढ़ा ही नहीं है, एक समय भी तब जाके बढ़ेगा। इसीलिए क्षेत्र बढ़ते बढ़ते लोक तक पहुंचा और काल बढ़ते बढ़ते पल्ले तक ही उसमें एक समय कम इतना ही बढ़ा, उससे अधिक नहीं हुआ। इस प्रकार द्विचरम समान वृद्धि की प्ररूपना की गई। अब यहां से आगे पढ़ते हैं। पुनः द्विचरम समान वृद्धि के औदारिक द्रव्य को क्या 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 गुणकार अंगुल का संख्या तो भाग है, पढ़ा कि पढ़ लिया हमने, वो पूरा पैराग्राफ हो गया। यानी द्रव्य के कितने विकल्प भी जाते हैं तो अंगुल के असंख्यात विभाग, ये अपना हो चुका। अभी हम अगले पैराग्राफ तक आ गए। पुनः द्विचरम समान वृद्धि के औदारिक द्रव्य को अवस्थित विरलना से समखंड करके देने पर उससे आगे का द्रव्य विकल्प होता है। ये समान वृद्धि की बात चल रही है। समान वृद्धि यानी जहां काल का अंतिम अंत से दूसरा ऐसा जो विकल्प था उस समय क्षेत्र में भी बहुत सारे विकल्प थे और द्रव्य में भी बहुत सारे विकल्प हुए, परंतु इस पोजिशन में जो द्रव्य का विकल्प था उसके आगे वाला द्रव्य का विकल्प निकालने के लिए हमने क्या किया था? हर बार ध्रुव भागहार से भाग देते हैं। तो ये द्विचरम समान वृद्धि के ये पोजीशन है द्रव्य की, उसके आगे वाला द्रव्य का विकल्प निकालना है। तो द्रव्य में ऐसा है, तो जघन्य द्रव्य से हमने शुरुआत की थी, उससे विशिष्ट भागहार से भाग देते 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 हर समय उतने ही भागहार से भाग देना है, इसलिए उसको कहते हैं ध्रुव भागहार। वो कितना है याद है? कौन सी संख्या से हम भाग देते आए? नहीं घनलोक नहीं, अरविंद भाई याद है? नहीं वो तो औदारिक की वो बात नहीं, वो मूल द्रव्य जघन्य द्रव्य था, वो घनलोक से भाग देने वाला। मेरा प्रश्न है ये जो फिक्स ध्रुव संख्या से जो हम भाग देते आए हैं वो कितनी है? नहीं याद? अच्छा कोई बात नहीं। हाँ हाँ मनोवर्गणा के जितने भेद है, भेद कितने? उत्कृष्ट मनोवर्गणा में से जघन्य मनोवर्गणा का प्रोपोर्शन वो कम करना और एक मिला देना, तो वो कहते हैं जघन्य मनोवर्गणा के भेद उसको अनंत का भाग देना, वो संख्या ध्रुव भागहार है। यानी विशिष्ट अनंत है ना, सामान्य से कहना है तो वो सिद्ध राशि का अनंतवा भाग कह दिया था, परंतु उसमें भी हमको स्पेसिफिक पर्टिकुलर बताना है, तो मनोवर्गणा के जितने भेद है उसका अनंतवा भाग ये फिक्स संख्या है, बार बार उसी से भाग देंगे हम, उसको कहते हैं ध्रुव भागहार या ध्रुवहार भी कहते हैं। तो अभी हम ये कहां तक पहुंचेंगे? द्विचरम समान वृद्धि, जहां काल की वृद्धि भी होकर ये द्विचरम में आ गया है, अंत के इससे दूसरा समय, क्षेत्र की भी और द्रव्य की भी, इससे आगे वाले विकल्प की चर्चा चल रही है। तो द्रव्य में आगे वाला विकल्प कब प्राप्त होता है या कैसे प्राप्त होता है? तो जो संख्या है उसको ध्रुवहार से भाग देते हैं तो आगे वाला विकल्प आता है। वही यहाँ कहा, देखो मैं ये वाक्य फिर पढ़ती हूँ। पुनः द्विचरम समान वृद्धि के औदारिक द्रव्य को, जहाँ हमने द्विचरम काल की बात देखी थी उसी पोजीशन में सब में वृद्धि हुई है, तो वहाँ वृद्धि होकर ये द्रव्य कहाँ तक पहुँचा है, तो जो कुछ मान लेते एक्स, उसके आगे का विकल्प निकालने के क्या हो क्या हुआ, तो द्विचरम समान वृद्धि के पोजीशन में जितना द्रव्य है उसको अवस्थित विरलना, हमने देखा था वो भागहार की संख्या उसी को विरलन करते हैं। और अवस्थित क्यों कहा? क्योंकि वो वही की वही फिक्स संख्या है, ध्रुव संख्या है, वो उसी संख्या से हम बार बार भाग देते आए हैं। तो अवस्थित विरलना से समखंड करके देने पर, हमने पहले माना था ना शुरू में एकदम शुरुआत करके, जैसे लाख हमने शुरू में लाख परमाणु के द्रव्य को जानता है देखा था, तो फिर हमने उसमें ध्रुव संख्या 5 मानी थी, तो अगले वाला विकल्प कैसे होगा? लाख को 5 से भाग देना, यहाँ की भाषा में 5 को विरलन करना, विरलन करना यानी बिखेर देना, एक 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 लिखना, तो 5 बार एक एक लिखना पड़ेगा। और जो लाख संख्या है वो 5 में विभाजित कर दो, समखंड यानी समान खंड, तो 20,000 हो गए, तो एक के प्रति 20,000 हुआ, तो आगे वाला द्रव्य विकल्प वो 20,000 को जानने वाला है, उससे छोटे को नहीं जानेगा। उससे आगे का निकालना है तो फिर 5 को विरलित कर दो और 20,000 को 5 समखंड करो, तो 4,000 आ जाएंगे। वैसे ही ये द्विचरम समान वृद्धि के पोजीशन में जो द्रव्य की संख्या है वहाँ अवस्थित विरलना यानी वो जो भागहार है उससे भाग दो कहो या विरलना में समखंड करके दे दो कहो, एक ही बात है। समखंड करके देने पर उससे आगे का द्रव्य विकल्प होता है, ये समझ में आया ना? क्योंकि हमने मान लेते हैं हम काल का भी जो पोजीशन आ गई है वहां जो क्षेत्र की पोजीशन आई है और द्रव्य की पोजीशन आई है, यदि हम असंख्यात का जो प्रोपोर्शन 4 मानते हैं तो समान वृद्धि के बाद काल कितने रह गया? एक समय। क्षेत्र के विकल्प कितने रहेंगे? 4। और द्रव्य के विकल्प रहेंगे बाकी 16। तो उस 16 में से दूसरे नंबर का कौन सा है अभी, या जो बाकी रहे 16 उसमें से पहला कहो तो भी चले, तो कौन सा है? तो इसको ध्रुव संख्या से भाग देना है, द्रव्य का विकल्प आगे वाला चलाएगा। अब भाव में क्या होगा? द्विचरम समान वृद्धि के भाव को उसके आगे वाली संख्या निकालनी है अभी, तो क्या करना पड़ेगा? भाव में असंख्यात से गुणा कर रहे हैं, यथा योग्य असंख्यात से गुणा करना, इसलिए बार बार तत्प्रायोग्य लिखा। द्विचरम समान वृद्धि के भाव को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर तदनंतर भाव विकल्प होता है, यानी आगे वाला भाव का विकल्प असंख्यात से गुणा करने पर आता है। इस प्रकार अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र द्रव्य व भाव के विकल्पों के बीत जाने पर क्षेत्र में एक आकाश प्रदेश बढ़ता है। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वैसा यहाँ भी चल ही रहा है, हर बार ऐसा ही समझना, द्रव्य और भाव के कितने विकल्प बीत जाने पर क्षेत्र में एक आकाश प्रदेश की वृद्धि होती है, अंगुल के असंख्यातवे भाग। इस प्रकार इस क्रम से द्रव्य और भाव के द्विचरम विकल्प तक लेना ले जाना चाहिए। द्रव्य और भाव के द्विचरम यानी वो भी 16 विकल्प बाकी थे ना, तो द्रव्य का 15वां विकल्प, क्योंकि द्रव्य के 4-4 हुए तब क्षेत्र में एक एक प्रदेश बढ़ा, ऐसे करते करते वो 15वें पोजीशन पर आ गया। पुनः अंतिम देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को उत्पन्न करते समय, अभी 15 से 16 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसी ध्रुवहार से भाग देना पड़ेगा। तो उस समय द्विचरम औदारिक द्रव्य को छोड़कर एक समय बंद के योग्य कार्मण वर्गणा द्रव्य को अवस्थित विरलना से समखंड कर देने पर देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य होता है। अब यहां पर किसको भाग देना है? कार्मण वर्गणा की जो संख्या है उसको ध्रुवहार से भाग देना है, तब जाके ये उत्कृष्ट वाला यहाँ का उदिज्ञान का विषय रूप द्रव्य का प्रमाण आया। कार्मण वर्गणा को एक बार ध्रुवहार से भाग देते हैं तब वहां का प्रमाण आता है। पहले तो हम औदारिक द्रव्य के उसकी भाषा में बात कर रहे थे, परंतु वो औदारिक द्रव्य बार बार भाग देते 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 अभी किस पोजीशन पर आ गया है? कार्मण द्रव्य को, ये भी विसर्गोपचय रहित वाला कार्मण द्रव्य है। हाँ जानेगा, हाँ, क्योंकि कार्मण वर्गणा एक समय में, एक समय प्रबद्ध का है ना, एक समय में जितनी कार्मण वर्गणाएं ग्रहण होती है उसको कार्मण का समय प्रबद्ध कहा, उसको ध्रुवहार से भाग देना है। यानी लास्ट बट वन जो 15वां विकल्प है द्रव्य का, उसमें कार्मण वर्गणा को लेना चाहिए। हाँ वहां था, उस उतने स्कंद को जानेगा द्रव्य में लास्ट बट विकल्प, द्रव्य में हो, समान वृद्धि का विकल्प नहीं ले रहे। समान वृद्धि के विकल्प के बाद तो उसके 16 विकल्प बाकी थे अपनी भाषा में, परंतु वो जब द्रव्य में से जो लास्ट बट वन कितना है, कार्मण वर्गणा जितना है। हाँ, क्योंकि अभी औदारिक को भाग देने के लिए वो रहा नहीं ना, इसलिए यहाँ कहा औदारिक को छोड़कर कार्मण को भाग देना, क्योंकि वो भाग देते 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 15वें विकल्प पर क्या पोजीशन हुई, वो कार्मण द्रव्य को जानने लगा था। अभी कंपैरिजन हम औदारिक की भाषा में कार्मण की भाषा में बोलेंगे। वैसे मूल संख्या को भागते भागते वहां तक आ गया कोई बात नहीं, उसको समझ तो सकते है, संख्या तो वही रहेगी, परंतु 15वें पोजीशन पे जो संख्या है दैट इज इक्वल टू कार्मण वर्ग, कार्मण वर्गणा। हाँ, कम होते 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 कार्मण वर्गणा तक को जानने लगा, इतने सूक्ष्म को जानने लगा। पहले तो स्थूल था, अभी ये सूक्ष्म की ओर चल रहा है ना स्कंद। पहले तो औदारिक शरीर अकेला नहीं, उसके साथ उसके विसर्गोपचय भी थे। ख्याल आता है? हाँ देखो, इस वाक्य में फिर पढ़ती हूँ नीचे से 5वीं लाइन। पुनः अंतिम देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को उत्पन्न करते समय, यानी देशावधि जो उत्कृष्ट देशावधि है, हमने जघन्य देशावधि से बात शुरू की थी, अब उत्कृष्ट देशावधि में जो कुछ होगा वहां पर काल कितना होगा, पल्ले में एक समय कम, क्षेत्र कितना होगा उत्कृष्ट देशावधि का, पूरा लोक है ना। अब द्रव्य कितना होगा, तो कार्मण वर्गणा डिवाइडेड बाय ध्रुव भागार। कार्मण वर्गणा तो लास्ट बट वन पोजीशन पर था, और भाव जो यथायोग्य होगा वो। तो देखो क्या कहते हैं अभी यहां पर, अंतिम देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को उत्पन्न करते समय द्विचरम औदारिक द्रव्य को छोड़कर, द्विचरम औदारिक द्रव्य यानी औदारिक द्रव्य हमें घटाते 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 द्विचरम पोजीशन पर आया था, उसी को हम दूसरा नाम देना है तो कार्मण द्रव्य भी कह सकते हैं। तभी औदारिक द्रव्य की बात छोड़कर हम कार्मण की भाषा में बात करेंगे। छोड़कर एक समय बंद के योग्य, वहां जो औदारिक द्रव्य जो हमने स्टार्ट किया था तो अकेला समय प्रबद्ध नहीं था, विसर्गोपचय सहित, और वो भी संचय था, संचय में समय प्रबद्ध को डेढ़ गुणहानि से गुणित किया था, तो उसका प्रमाण बहुत अनंत अनंत हुआ था। अब अकेला कार्मण वर्गणा का समय प्रबद्ध लिया है, इसके आगे भी जो परमावधि के भेद है उसको ही हम ध्रुव भागार से भाग देते चले जाएंगे। ध्रुव भागार उसी को कहते हैं कि जो ध्रुव है संख्या, तो देशावधि के भेद को निकालना है, परमावधि के निकालना है, तो वही की वही संख्या है। तो अभी औदारिक द्रव्य का नाम हम छोड़ देंगे, अभी क्या कहेंगे, कार्मण वर्गणा, एक समय बंद के योग्य कार्मण वर्गणा। एक समय में जितनी कार्बन वर्गणाएं बनती, वर्गणाएं कहां, परमाणु नहीं वर्गणाएं है, क्योंकि वर्गणाएं अनंत होती है और एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं। तो कार्बन वर्गणा द्रव्य को क्या करना, अवस्थित विरलना से, अपनी भाषा में ध्रुवहार से, यानी दूसरी भाषा में द्रव्य का जो विकल्प अंत से दूसरा है, उत्कृष्ट देशावधि का अंतिम विकल्प निकालने के लिए क्या करना है, कार्माण वर्गणा को ध्रुवहार से भाग देना है। सिंपल में ये पूरे का अर्थ वही है, अवस्थित विरलना से समखंड कर देने पर, यानी कार्माण वर्गणा को अवस्थित विरलना में समखंड कर देना, उसी का अर्थ है कार्माण वर्गणा को उस ध्रुव संख्या से भाग देना। देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य होता है, कार्माण लास्ट बट वन में कार्माण वर्गणा हुई समय प्रबद्ध, और लास्ट में उसको ध्रुवहार से भाग दिया, ये देशावधि का उत्कृष्ट, उत्कृष्ट देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य। अब भाव में क्या हुआ था, देशावधि के द्विचरम भाव को, ये समान वृद्धि यहां शब्द नहीं डाला है, तो द्विचरम भाव यानी वो 15 से 16 नंबर पर जा रहा है अभी, यहां भाव भी जा रहा है ना, द्रव्य जाता है तब तब भाव भी बदलता है, तो वो क्या होगा, पहला जितना था उससे असंख्यात गुणा हो जाएगा। तो द्विचरम भाव को तत्प्रायोग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर देशावधि का उत्कृष्ट भाव होता है, यानी जो उत्कृष्ट जो देशावधि है वो इतने पर्यायों तक को जानता है। क्षेत्र के ऊपर एक आकाश प्रदेश बढ़ने पर देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र लोक होता है। जब द्रव्य में हमने 15 से 16 कहा या 16 पूरे हुए, तो यहां भी 3 से वो 4 पूरे हो जाएंगे ना, तो एक आकाश प्रदेश बढ़कर पूरा लोक हो जाएगा, अंतिम समान वृद्धि है ये, अंत की समान वृद्धि। काल भी एक समय बढ़ेगा, क्षेत्र भी एक प्रदेश बढ़ेगा, द्रव्य का भी अगला विकल्प होगा जो कार्माण वर्गणा को हमने भाग दिया था, और भाव भी असंख्यात गुना बढ़े, ये अंतिम समान वृद्धि कहलाएगी, यानी उत्कृष्ट देशावधि और उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव लोक होता है। क्योंकि वर्गणा में जब तक लोक है तब तक प्रतिपाती है, ऊपर अप्रतिपाती है, ऐसा कथन है वर्गणा नाम का जो कुछ अनुयोग द्वार है उसमें ये बात कहीं आती है, अर्थात क्षेत्र की अपेक्षा उत्कर्ष लोक को, उत्कृष्ट है क्या उत्कर्ष, ये तो उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, मूल में तो उत्कर्ष शब्द ही नहीं है, अर्थात अर्थात कहकर उनको समझाना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि जो उत्कृष्ट या उत्कृष्ट से जो लोक को विषय करने वाला देशावधि प्रतिपाती है, और इससे आगे के परमावधि व सर्वावधि अप्रतिपाती है, उत्कृष्ट ही चाहिए। उत्कृष्ट से किसको विषय कर रहा है, लोक को, अभी आगे जाके कहेंगे ऐसा कहने वाला भी घटित नहीं होता द्विचरम काल के ऊपर एक समय का प्रक्षेप करने पर, प्रक्षेप का अर्थ याद है, हाँ, डालना यानी उसमें ऐड करना, तो द्विचरम काल हमने देखा उसमें और एक बढ़ेगा तो क्या होगा, समय कम पल्ले होगा ना, देशावधि का उत्कृष्ट काल होगा, देशावधि का उत्कृष्ट काल एक समय कम पल्ले होता है। ऐसी जो अन्य आचार्यों के व्याख्यान क्रम की प्ररूपना है वह युक्ति से घटित नहीं होती, क्योंकि वैसा मानने पर सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देवों के उत्कृष्ट अवधि द्रव्य से उत्कृष्ट देशावधि द्रव्य को अनंत गुणत्व का प्रसंग आवेगा, यानी सर्वावधि देव जो कहां के सर्वार्थ सिद्धि के अवधि द्रव्य कितना है उनको जानने का, द्रव्य कितना है यदि ऊपर से हम बात करेंगे तो उससे उत्कृष्ट वाला जो देशावधि का द्रव्य है कितना जानता है, हमने देखा कारमान वर्गणा का डिवाइडेड बाय ध्रुवभागा, तो उसके अनंत गुणत्व का प्रसंग आवेगा, वो अनंत गुणा है ऐसा कहना पड़ेगा। वह इस प्रकार से वो क्यों कहना पड़ेगा उसको अभी बता रहे हैं। लोक के संख्यातवे भाग को शलाका रूप से स्थापित करके मनोवर्गणा के अनंतवे भाग का विसरसोपचय रहित अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म प्रदेशों में आगमानुसार भाग देने पर अंतिम एक खंड को सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देव जानता है, परंतु उत्कृष्ट देशावधि ज्ञानी एक बार खंडित एक समय प्रबंध को जानता है। क्या कहना चाहते हैं? इनका क्षेत्र कितना है? हाँ, लोकनाली। तो लोकनाली कितनी है? ये सर्वार्थ सिद्धिवासी जो विमानवासी ना, सर्वार्थ सिद्धि ने सबसे ऊपर अनुत्तर में सबसे बीच वाले, तो वो कितना जानते हैं? 14 राजू, यानी थोड़ा कम, परंतु 14 राजू समझेंगे हमें। और नो लोकनाली की उसकी कितनी है विड्थ? और वो एक राजू बाय अभी ऊंचाई 14 राजू, तो वो पूरे लोक का कितना भाग है? 14 घन राजू, ये 343 का कितना भाग है? संख्यात्वा भाग है, बरोबर? असंख्यात्वा है, 14 भी घन राजू है, 343 भी घन राजू है। होने दो ना, मगर यहाँ भी घन राजू हुआ है, वहां भी घन राजू हो गया। मैंने आपको क्या कहना चाहते हैं? हम खाली हम केवल उससे संख्या से गुणा कर रहे, राजू से नहीं गुणा करें। यदि प्रतर का और घन लोक का भाग होता तो असंख्यात गुणा हो जाता है। संख्या नहीं समझे इन्होंने क्या पूछा और हमने क्या जवाब दिया, वो तो आप समझो। देखो, 7 राजू गुणा 7 राजू, ये राजू है, गुणा 7 राजू, ये क्या हुआ? ये लोक हुआ, पूरा लोक 343 घन राजू हुआ, बराबर। अब हमने क्या कहा था? 14 घन राजू और पूरा लोक कितना है? 343 घन राजू। ये दोनों ही घन राजू का ही प्रमाण है, इसलिए 14 कितने गुना होगा? 14 दुनिया 28 और जो कुछ है इतने, वो प्रोपोर्शन होगा, वो संख्यात गुना हो जाएगा। मैंने कहा यदि ये घन राजू नहीं होता, प्रतर रूप होता, मान लेते 49 स्क्वेयर राजू होता, घन राजू नहीं, प्रतर राजू, तो प्रतर राजू से वो कितने, उसको 7 राजू से गुना करना पड़ता है ना, तो असंख्यात गुना हो जाता। 7 राजू गुणा 7 राजू, ये प्रतर जगत प्रतर कहलाता है, जगत प्रतर 49 स्क्वेयर राजू, प्रतर राजू दूसरी भाषा में जगत प्रतर। जगत प्रतर से लोक कितने गुना है, और एक जगत श्रेणी से ने 7 राजू से गुना करना पड़ेगा। स्क्वेयर से घन करने के लिए उसमें फिर राजू संख्या आनी चाहिए जिससे गुणा करना है, तो असंख्यात गुणा हो जाता। इसलिए यहाँ क्षेत्र कितना, कहाँ देखो, लोक के संख्यात्वे भाग को शलाका रूप से स्थापित करके, ये शलाका क्यों स्थापित करनी चाहिए? क्योंकि हम इसमें कितने क्षेत्र को जान रहा है अभी, 14 घन राजू को जान रहा है, तो ये लोक का संख्यात्वा भाग है, तो उतने एक 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 प्रदेश से बढ़ते हुए हम लोक का संख्यात्वा भाग निकालना है, तो उतने द्रव्य के विकल्प उससे कुछ कितने गुना हो जाएगी ना, तो द्रव्य के विकल्प निकालने के लिए हम उतनी बार ध्रुव भागार से भाग देते चले जाएंगे। तो इसलिए यहां कहते हैं लोक के संख्यात्वे भाग को शलाका रूप से स्थापित करके मनोद्रव्य वर्गणा के अनंतवे भाग का, ये क्या है मनोवर्गणा का अनंतवा भाग, ध्रुव भाग आ रहे हैं। अभी अभी हमने देखा था ना, इसको ध्रुवहार कहो या ध्रुव भागहार कहो, यानी जिस संख्या से हम बार बार भाग दे रहे वो ये संख्या है, उस भाग का विसरसोपचय रहित अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म प्रदेशों में। अब ये कर्म प्रदेशों में भाग देने की बात है, एक समय प्रबद्ध की बात नहीं है। अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म प्रदेशों में आगमानुसार भाग देने पर अंतिम एक खंड को सर्वार सिद्धि विमानवासी देव जानता है। ये उसकी कितना जानता है उसका फिक्स प्रोपोर्शन है। सर्वार सिद्धि वाला देव कितने द्रव्य को जानता है, मैक्सिमम कितना जानता है, अवधि ज्ञानावरण जो कर्मों का प्रदेश है उसमें तो अकेले समय प्रबद्ध नहीं लेना है, पूरा उसका जितना द्रव्य पड़ा है अंदर उसको सबको लेना है। और वो भी कैसा है, विसरसोपचय रहित अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म प्रदेशों में भाग देने पर, आगमानुसार यानी जो ध्रुव भागहार का भाग देने पर अंतिम एक खंड को सर्वार सिद्धि विमानवासी देव जानता है, परंतु उत्कृष्ट देशावधि कितने को जानता है, एक बार खंडित एक समय प्रबद्ध को जानता है। और एक समय प्रबद्ध और नाना समय प्रबद्ध कृत भेद भी नहीं है, क्योंकि यहां पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र उसके गुणकार की प्रधानता का अभाव है। यह देवों के उत्कृष्ट द्रव्य की उत्पादन विधि असिद्ध नहीं है, यानी देव कितना द्रव्य जानते हैं उसके लिए ये जो विधि है, प्रोसेस है, वो असिद्ध नहीं है, यानी प्रसिद्ध है, क्योंकि वह अपने क्षेत्र में से एक प्रदेश उत्तरोत्तर कम करते हुए अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म का अनंतवा भाग है, इस सूत्र से सिद्ध है। देवों के अवधि ज्ञान का क्षेत्र तो बताया है, और उसका द्रव्य निकालने के लिए क्या सूत्र है, अपने क्षेत्र में से, उनका क्षेत्र कितना है तो देखा, एक एक प्रदेश उत्तरोत्तर कम करते हुए अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म का अनंतवा भाग है, इस सूत्र से सिद्ध है। इस कारण देखो पूरा पढ़ेंगे, इस कारण जघन्य द्रव्य से आगे, यानी उनका जानने का जो जघन्य द्रव्य है उससे आगे उसके योग्य विकल्पों के बीत जाने पर विसरसोपचय सहित औदारिक द्रव्य को छोड़कर विसरसोपचय रहित कारमण समय प्रबद्ध देना चाहिए, क्योंकि औदारिक विसरसोपचयों से कारमण विसरसोपचय अनंत गुणे हैं। अभी अनंत औदारिक विसरसोपचय छोड़कर कारमण की बात है, परमाणु सूक्ष्म स्कंद सूक्ष्म होता चला जाता है और वहां ये ज्यादा है कारमण का उसमें। और यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि औदारिक शरीर का विसरसोपचय सबसे स्तोक है। यहां से आगे जितना स्कंद की अवगाहना है वो छोटी होती है और उसमें परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, तो इससे आगे औदारिक शरीर का विसरसोपचय छोड़कर अभी कारमाण का लिया, बराबर, उसके लिए क्या बात बता रहे, औदारिक शरीर का विसरसोपचय। विसरसोपचय का अर्थ याद है, हाँ देखिए, जो कोई भी कारमाण का परमाणु हो या औदारिक शरीर का परमाणु हो उसके साथ साथ अनंत अनंत अन्य ऐसे ही परमाणु चिपके हुए रहते हैं स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण। स्कंद बनता है ना, हमने देखा था उसमें जो कुछ डिफरेंस है दो गुणों का, उसके कारण वो स्कंद बनता है उसका। तो ये नेचुरली बने हुए स्कंद है, अपने राग द्वेष के कारण जुड़े हुए नहीं है। राग द्वेष का निमित्तपना तो अवदारी ये कारमान के साथ बनेगा, औदारिक भी है वो पुराने औदारिक शरीर नाम कर्म के कारण वो जुड़ेंगे, परंतु विसरसोपचय अपने से किसी निमित्त से जुड़े हुए नहीं है, फिर भी अपने ही आत्म प्रदेशों में स्थित है, इसलिए उसको कहते हैं विसरसोपचय, नेचुरली आए हुए, किसी विशिष्ट प्रयोग के कारण या किसी कारण नहीं है, विसरसायने निसर्गतः ऐसे आए हैं स्वाभाविक रीति से। अब उसमें कौन सा विसरसोपचय ज्यादा है कौन सा कम है उसको कहते, औदारिक शरीर का विसरसोपचय सबसे स्तोक है, उससे वैक्रियक शरीर का विसरसोपचय अनंत गुणा है, उससे आहार शरीर का विसरसोपचय अनंत गुणा है, उससे तेजस शरीर का विसरसोपचय अनंत गुणा है, और उससे कार्मण शरीर का विसरसोपचय अनंत गुणा है। इस प्रकार वर्गणा सूत्र से उसे अनंत गुणत्व सिद्ध है। अब शंकाकार पूछ रहा है, उसी के अभी आगे के लिए बताया क्या पीछे के लिए, हाँ हाँ ऐसी जब कहते तो ये ऐसी यानी वो जो बता चुके हैं, नहीं नहीं वो तो ठीक है, परंतु उसके आगे जो लिखा है ना कि इसका प्रतिपाती है ये विषय करने वाला है, ये तो जो है उसको बताया उन्होंने। हाँ उसकी बात नहीं है, ऐसी शब्द किसके लिए बताया, हमारी चर्चा दूसरे पॉइंट पर चल रही है, ऐसी जो बात है वो आने वाले के लिए ऐसी लिखा है क्या, जो बीत चुके उसके लिए ऐसी लिखा है, आप समझे नहीं, ये कौन सी बात सिद्ध नहीं होती ये बताया है, ये क्लियर नहीं है इसमें, ये पहले जो बात हम लोक होता है और वो एक समय कम पल्ले होता है वो तो सिद्ध बात है, प्रसिद्ध बात है। हाँ अनंत, देखो देखो जरा सुनो, ये जो लिखा ना वर्गणा में जब तक लोक है तब तक प्रतिपाती है, प्रतिपाती है कि नहीं उसके लिए ये खाली ऐसी जो प्ररूपणा है, यहाँ क्या कहा, जब तक लोक है तब तक प्रतिपाती है, ऊपर अप्रतिपाती है, और क्षेत्र में उत्कृष्ट लोक को विषय करने वाला देशावधि प्रतिपाती है, और आगे के परमावधि और सर्वावधि अप्रतिपाती है, ऐसा जो कथन है वो नहीं होता, क्योंकि देशावधि भी ऐसे कितने ही है कि जो प्रतिपाती नहीं है, यहाँ क्या विधान किया अभी उन्होंने ऊपर से चार पांच लाइन में, परमावधि और सर्वावधि प्रतिपाती नहीं है परंतु उत्कृष्ट देशावधि तक प्रतिपाती है, ऐसा जो कथन किया है वो घटित नहीं होता। यानी लोक है तब तक प्रतिपाती ही होता है ऐसा नहीं, उसमें भी कितना ही तो अप्रतिपाती है वो बताया ना, हाँ सर्वार्थ सिद्धि वाले जो है सम्यक दृष्टि है, वहां भी अवधि ज्ञानी है और यहाँ भी अवधि ज्ञानी है, तो उनका अवधि ज्ञान प्रतिपाती यानी गिरने वाला, अगले भव में जब जाता है तो वो साथ में चलता है तो उसको अप्रतिपाती कहते हैं। हमने यहां से भी देखा देशावधि ज्ञानी भी कितने यहां से सम्यक दृष्टि है, उनका भी अवधि ज्ञान चलता रहता है, क्योंकि सम्यक तो सहित गए हैं ना, तो अपर्याप्त अवस्था में भी हमने देखा था कितने ही देवों में वो अवधि ज्ञान, भवनत्रिक में तो नहीं जाएंगे सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञान सहित, तो ऊपर जाने वाले उनके अपर्याप्त अवस्था में भी अवधिक ज्ञान भी है, तो उसको हम प्रतिपाती नहीं कहेंगे, अप्रतिपाती कहेंगे। तो यहाँ जो उन्होंने बताया था कि जो पूरा विषय करता है वो उसके आगे वाला भेद यानी परमावधि का जघन्य भेद वही अप्रतिपाती है और ये उत्कृष्ट तक प्रतिपाती है, तो ऐसा घटित नहीं होता, ये बात यहाँ बताना चाहते। ये तो सर्वार सिद्धि वालों का जो हमने द्रव्य या क्षेत्र निकाला है वो घटित नहीं होगा, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान तक यदि हम प्रतिपाती मानते हैं तो यहाँ पर वो बात घटित नहीं होती। उसके लिए उन्होंने गणित करके समझाया है। देखो फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लाख वाले को जानते थे, अभी औदारिक के विसरसोपचय में हम घटा रहे थे, वो ख्याल है ना, औदारिक में सूक्ष्म सूक्ष्म को जान रहे थे, परंतु अभी हम कारमाण की ओर बढ़ेंगे तो उतने ही अवगाहना वाले स्कंद में परमाणु की संख्या ज्यादा है, इतना भी चौक हमने लिया तो इसमें जितनी परमाणु की संख्या है, तो उसके लिए हम छोटा 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 को जान रहे थे। आगे वाला स्कंद तो छोटा अभी, परंतु वो आहार वर्गणा या औदारिक संबंधी वर्गणा बदल कर क्या हुआ, कारमाण के हो गए, तो कारमाण में उतने ही छोटे साइज में अनंत गुणे परमाणु आ गए। अब उसको हम कारमाण के साथ बताएंगे, उसको समझाने के लिए अगले अगले पॉइंट पर कितने सूक्ष्म स्कंदों को जानता है उसकी बात यहां करनी है, क्योंकि ये स्कंद स्थूल है ना, औदारिक के स्कंद स्थूल है और कारमाण के आगे आगे वाले हैं वो सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंद है, इसलिए हाँ कारमाण सबसे सूक्ष्म है, इसलिए उसको छोड़ छोड़ कर आगे वाले अन्य अन्य स्कंदों से वो ही बात समझाएंगे, सूक्ष्म परिणमन वाले है वहां। के परमाणु की संख्या ज्यादा है, संख्या ज्यादा है परंतु उसका साइज या की सूक्ष्मताओं की ओर बढ़ रहा है वो। इसलिए शंकाकार ने क्या पूछा, देखो अभी 37 पृष्ठ पर ये शंका, विसरसोपचयों को छोड़कर औदारिक परमाणुओं को ही अवस्थित विरलना से क्यों नहीं देते, आपको साइज ही कम करना है, संख्या ही कम करनी है, तो पहले विसरसोपचय सहित औदारिक के परमाणु लिए थे, अब विसरसोपचय छोड़ दो और औदारिक को अकेले के ले लो। उसका समाधान, नहीं देते क्योंकि वे विरलन राशि से अनंत गुणे हीन है, ऐसा गुरु का उपदेश है। विरलन राशि कौन सी है, ये ध्रुव भाग हार, वो कौन सी है, मनोवर्गणा के भेदों का अनंतवा भाग, वो संख्या अनंत में है, वो वाला अनंत विसरसोपचय रहित औदारिक परमाणुओं से वो ध्रुव भाग हार बड़ा है, ये संख्या बहुत कम है, तो उसको कैसे हम विभाजित करके देंगे। हाँ, वो क्यों ज्यादा हुए थे, विसरसोपचय थे इसलिए, इसलिए क्योंकि एक एक औदारिक परमाणु के साथ विसरसोपचय कितने थे, एक एक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणे। हाँ अकेले औदारिक की अगर लेते हैं तो कम हो जाती है, इसलिए देखो नहीं देते क्योंकि वो विरलन राशि से अनंत गुणाहीन है, दो चार पांच कम है ऐसा नहीं, अनंत गुणाहीन है, विरलन राशि उससे अनंत गुणा बड़ी है, तो उसमें हम कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसा गुरु का उपदेश है। तो फिर शंकाकार पूछता है कि विरलन राशि से कारमण द्रव्य अनंत गुणा है, ये कैसे जाना जाता है, आपने औदारिक को अभी छोड़ दिया, अब कारमण को पकड़ा तो वो उससे अनंत गुणा है, ये आपने कैसे जाना। उसका समाधान, आहार वर्गणा के द्रव्य स्तोक है, स्तोक यानी अल्प है, तेजस वर्गणा के द्रव्य उससे अनंत गुणे हैं, आहार वर्गणा में तीनों ही लिए, औदारिक, वैक्रिक और आहारक के मिलकर आहार वर्गणा कही। उससे तेजस वर्गणा जो है उसका द्रव्य एक एक वर्गणा में परमाणुओं की संख्या वो अनंत गुणा है। भाषा वर्गणा के द्रव्य उससे अनंत गुणे हैं, मनोवर्गणा के द्रव्य अनंत गुणे हैं और कार्मण वर्गणा के द्रव्य अनंत गुणे हैं। यानी सबसे किस में ज़्यादा है? कार्मण वर्गणा में। इस वर्गणा सूत्र से वह जाना जाता है। शंका, यदि ऐसा है तो आदि से लेकर पहले औदारिक वाले को लिया ही क्यों बीच में कहते? आदि से लेकर कार्मण द्रव्य को ही मनोद्रव्य वर्गणा द्वारा क्यों खंडित नहीं करते? ध्रुव भागहार से जो हम भागते आए हैं तो शुरू से उसी को लेना था। हाँ, समाधान नहीं, क्योंकि हाँ, श्लोक श्लोक ऊपर की गाथा पढ़ेंगे। यहाँ 14 नंबर की जो ऊपर दिखी एक, हाँ इसकी गाथा गोमरसार जीवकांड वगैरह में भी है। तेयाकमय शरीरम तेया दौवं वभास दौवं च बोद्धौवम असंखेजा दिवसमुदाय वासाय। अभी समाधान करते हैं, पहले से ही उसी को ध्रुव भागहार से क्यों नहीं भाग दिया? तो कहते हैं क्योंकि ऐसा होने पर देशावधि के वो शाम में एक मात्रा ज्यादा पड़ गई। देशावधि के मध्य विकल्पों में जहां अवधि ज्ञान, क्या कहते हैं, अभी शुरू में कहा हमने वो औदारिक के विश्रसोपचे सहित वाले को देखा, बीच वाले कुछ अभी विकल्प बताने वाले, वो किस किस को जानता है? तो किस किस को जानता है? तेजस शरीर, उससे आगे कार्मण शरीर, उसके आगे तेजो द्रव्य। देखो पहले में जो तेजस शरीर लिया ना, तो उसमें विश्रसोपचय सहित वाला लेना है पहले। अभी इसको नंबर दे दो, ये बीच वाले कुछ विकल्प बता रहे हैं। पहला हमने जघन्य देशावधि में औदारिक का लिया था, विश्रसोपचय सहित औदारिक द्रव्य लिया था, औदारिक शरीर लिया था। शरीर यानी पूरे संचित परमाणु होते हैं, जब शरीर कहते तो पूरे संचित परमाणु को ले लेना है ना, और वो भी विश्रसोपचय सहित लिया। अभी यहाँ तेजस शरीर का अर्थ है विश्रसोपचय सहित लेना है इसको। उसके आगे कार्मण शरीर, दूसरे पॉइंट पर, वो भी विश्रसोपचय सहित कार्मण शरीर है। इसका अर्थ होता है पूरा ही कार्मण द्रव्य, जितना समय प्रबद्ध गुना, डेढ़ गुना हानि, ये सब उसमें आता है। उसके आगे तेजो द्रव्य, तेजो द्रव्य अकेले तेजो द्रव्य कहते हैं तो विश्रसोपचय से रहित समझना, अर्थात विश्रसोपचय रहित तेजस वर्गणा। उसके आगे अभी चौथा पॉइंट, भाषा द्रव्य अर्थात विश्रसोपचय रहित भाषा वर्गणा, और उससे आगे मनोवर्गणा को जानता है। मनोवर्गणा अकेला लिखा है ना, उसका अर्थ होता है विश्रसोपचय रहित मनोवर्गणा को जानता है। वहां क्षेत्र कितना होता है? ये जहां इतने इतने द्रव्य को जानता है वहां उसका क्षेत्र कितना कितना है वो भी बताया है। तो असंख्यात द्वीप समुद्र को जानता है, और वहां काल कितना जानता है? तो असंख्यात वर्ष प्रमाण होता है। देखो यहां पांचों के लिए असंख्यात द्वीप समुद्र और काल असंख्यात लिखा, असंख्यात वर्ष। उसमें ऐसा समझना ये जो पांच बताए ना, अलग अलग पॉइंट्स बताए जिसको हम माइलस्टोन्स कहेंगे, किसी विशिष्ट पॉइंट पर। पहले तो हमने देखा था विश्रसोपचय सहित औदारिक वाला लिया था, अब इस पॉइंट पर, विशिष्ट पॉइंट पर मध्यम अवदेशावधि जो है वो कितने द्रव्य को जान रहा है? तो कहते तेजस शरीर को जान रहा है। विश्रसोपचय सहित तेजस शरीर को जो इतने द्रव्य को जान रहा है, पहले तो औदारिक शरीर वाला वो स्थूल था, तेजस वाला सूक्ष्म है, अब उसको जानता है। तो उस समय वो कितने द्वीप समुद्र, क्षेत्र कितना है उसका? असंख्यात द्वीप समुद्र। और उसी समय काल कितना है? असंख्यात वर्षा। अब उससे आगे अवधि ज्ञान और बढ़ते चला गया, पावरफुल। तो वह आगे किसको जानता है? विश्रोपचय सहित कार्मण शरीर को भी जानने लगा। पहले कार्मण शरीर उसके अवधि ज्ञान का विषय नहीं था, अब होने लगा। उस समय कितने द्वीप समुद्रों को जानता है? असंख्यात। परंतु जो पहला पॉइंट पर जो असंख्यात था, उससे ये असंख्यात गुणे हैं, ज्यादा यानी असंख्यात गुणे हैं। क्षेत्र भी बढ़ा ना, और उस समय पहले भी असंख्यात वर्षों तक को जानता था, अभी भी असंख्यात, परंतु ये वो भी असंख्यात गुणे हो जाते हैं। यानी जो अभी हमने पांच देखे थे, सबके लिए सामान्य कथन क्या, असंख्यात द्वीप समुद्र को जानता है और असंख्यात वर्ष काल तक को जानता है। परंतु पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथे से पांचवा, उसमें द्वीप समुद्रों की संख्या भी असंख्यात गुणा होगी और काल भी असंख्यात गुणा बढ़ेगा। सबके लिए सामान्य कथन असंख्यात लिखा है, परंतु आगे आगे के भेद तो बढ़ने ही वाले हैं। जहां द्रव्य को सूक्ष्मता की ओर जानता है, वही क्षेत्र भी बढ़ेगा। सामान्य से कथन ऐसा ही होगा कि असंख्यात द्वीप समुद्रों को जानता है और असंख्यात वर्षों को जानता है, परंतु वहां काल भी बढ़ गया है और क्षेत्र भी बढ़ गया है। देखो समय ज्ञान चंद्रिका होगी तो 537 पेज निकालना। नीचे देखो 396 की टीका, देशावधि के मध्य। अभी हमने जो पढ़े ना पांच, उसी को फिर दोबारा पढ़ा, उसका रेफरेंस वहां भी दिया था उन्होंने, गोमर सरजू का। देशावधि के मध्य भेदनी विषय, यानी मध्यम कुछ भेद बताएंगे अभी, उसमें देशावधि ज्ञान जिस भेद विषय विश्रसोपचय सहित तेजस शरीर रूप स्कंद को जाने हैं, ये पहले पॉइंट पर हमने भी यहां देखा था। तीसरी क्रम तय, यानी आगे आगे वो बढ़ते चले जाएगा, जिस भेद विषय यानी आगे के कोई अन्य भेद में विश्रसोपचय सहित कार्मण शरीर स्कंद को जाने हैं। कार्मण शरीर स्कंद में पूरा ही वो समय प्रबद्ध मल्टीप्लाइड बाय डेढ़ गुणहानि वाला, जितना कार्मण का संचय, अभी पूरा कर्म का जितना द्रव्य पड़ा है अंदर, सत्ता में पड़ा हुआ पूरा लेना। बहुरी यहां ते आगे जिस भेद विषय विश्रसोपचय रहित केवल तेजस वर्गना को जाने हैं। पहले तो पूरा तेजस शरीर लिया था विश्रसोपचय के साथ साथ, अभी अकेले तेजस वर्गना को लिया। तीन नंबर पे हमने वहां नंबर डाले थे ना, तीसरा। यहां ते आगे जिस भेद विषय, आगे के किसी भेद में, यानी वो क्रम से बढ़ता है, परंतु वो बीच का कोई एक विशिष्ट ही बताया कि जहां कुछ प्रोमिनेंट है ना, कि ये यहां तक को जानता है। बीच में बहुत सारे भेद है, आगे के कोई एक भेद कितना जानता है। विश्रसोपचय रहित केवल भाषा वर्गणा को जाने हैं। यहां ते आगे जिस भेद विषय विश्रसोपचय रहित केवल मनोवर्गणा को जाने हैं, तहां इन्हीं पांच स्थाननी विषय, स्थानानी हुआ है उसको स्थाननी करना, क्षेत्र का प्रमाण असंख्यात द्वीप समुद्र जानना और काल असंख्यात वर्ष मात्र जानना। यहां तक तो बात वही जो अभी हमने पढ़ी थी उतनी है, उसके आगे भी उसका और कुछ समझा रहे। पूर्वोक्त पंच भेद लिए अवधि ज्ञान असंख्यात द्वीप समुद्र विषय पूर्वोक्त स्कंद, पूर्वोक्त स्कंद ने अभी हमने जो अलग अलग स्कंद बताए, उन स्कंदों को असंख्यात वर्ष पर्यंत अतीत अनागत यथा योग्य पर्याय के धारी तिनी को जाने हैं। इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब बताया, कितने क्षेत्र तक के स्कंदों को जानता है, तो असंख्यात द्वीप समुद्रों तक के स्कंदों को, कौन से स्कंद जो अभी हमने देखे उनको, कितने काल पूर्व पश्चात तक, तो कहते हैं असंख्यात वर्षों के समयों तक, और भाव कितना, तो यथा योग्य पर्यायों को जानता है। सभी बातें बताई ना, परी इतना विशेष है, जो इन्हीं पंच भेद ने विषय पहला भेद संबंधी क्षेत्र काल का परिमाण है तात, यानी उससे, क्योंकि हर जगह वो असंख्यात द्वीप समुद्र और असंख्यात वर्ष ही कहा, परंतु पहले भेद में जितने क्षेत्र और काल को जानता है उससे दूसरे भेद संबंधी क्षेत्र काल का परिमाण, वहां परिणाम लिखा है, वो परिमाण करना, वो परिमाण असंख्यात गुणा है। मैंने अभी बताया था ना, ये मैंने पढ़ा था, इसीलिए मैंने असंख्यात गुणा कहा था, अपने मन से नहीं कहा था। सब जगह असंख्यात द्वीप समुद्र और असंख्यात वर्ष काल लिखा है, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में द्वीप समुद्रों का प्रमाण भी असंख्यात गुणा बढ़ेगा और काल का प्रमाण भी असंख्यात गुणा बढ़ेगा, दूसरे से तीसरे का असंख्यात गुणा है, ऐसे ही पांचवा भेद पर्यंत जानना। परंतु कथन में सामान्यपने क्या कहेंगे, सबके लिए असंख्यात द्वीप समुद्र और असंख्यात वर्ष, सामान्यपने सबका क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र और काल असंख्यात वर्ष कहे है, क्यों कहे जातई, यानी क्योंकि असंख्यात के भेद घने हैं, ख्याल है? अभी हम यहाँ मूल पुस्तक में आते हैं, पृष्ठ संख्या 38। प्रश्नकार ने प्रश्न कहा था, पूछा था कि स्टार्टिंग से ही कारमान द्रव्य को विभाग देने थे, तो उसके लिए यह गाथा प्रस्तुत की कि ये इतने उसके अलग अलग मध्यम विकल्प है देशावधि के, उन स्कंदों को जानने वाला है, पहले से कारमान वर्गणा की बात करते तो वे कैसे घटित होते हैं, ख्याल है ना? तो कहते इस सूत्र रूप गाथा के साथ विरोध होगा। गाथा तो उन्होंने ग्रंथों में से उद्धृत की और बताया इसको विरोध आ जाता यदि हम स्टार्टिंग पॉइंट से ही कारमान द्रव्य को लेते तो। इसलिए कहीं औदारिक शरीर, कहीं तेजस शरीर, कहीं कारमान शरीर, शरीर में पूरा ही स्कंद ले लेना, विश्रसोपचय सहित वाला, हाँ सहित वाला, कहीं तेजस द्रव्य, अभी अकेला द्रव्य लिया, विश्रसोपचय रहित वाला, कहीं भाषा द्रव्य, कहीं मन द्रव्य और कहीं कारमण द्रव्य देना चाहिए। ये अलग अलग जानबूझकर ऐसा दिया है क्योंकि सूक्ष्म स्कंदों को जान रहा है आगे चलकर, उसमें भले ही परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो भी स्कंदों की सूक्ष्मता हो रही है। शेष पूर्व के समान कहना चाहिए। पहले वो औदारिक शरीर को गिनते थे और उसको अनंत का भाग देते थे, अभी वो भाग देते देते इतने छोटे तक चले जाएंगे, फिर हमको कारमान शरीर के द्रव्य का आधार लेना पड़ा। ये पहले ये जो बीच में सारे पांच पॉइंट को ले लेना है, अभी हम अंत की बात कर रहे थे ना, उसको कैसे निकालना है, तो उसके लिए क्या लिया हमने, अंत से दूसरा कारमान वर्गणा वाला था और अंतिम कारमान वर्गणा डिवाइडेड बाय ध्रुवहार, ये क्यों उसको लिया, वो सारी अभी समाधान से अपनी चर्चा समाधान से अपने वो हो गई अपनी। शेष पूर्व के समान कहना चाहिए, पूर्व के समान असंख्यात द्रव्य और भाव के विकल्पों के बीत जाने पर जब जघन्य अवधि क्षेत्र को आवली के असंख्यात वे भाग से गुणा किया जाता है तब क्षेत्र का द्वितीय विकल्प होता है, इसी प्रकार असंख्यात क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर जब जघन्य काल को आवली के असंख्यात भाग से गुणित किया जाता है तब काल का द्वितीय विकल्प होता है, इस प्रकार देशावधि के उत्कृष्ट विकल्प तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार कितने ही आचार्य देशावधि का प्ररूपण करते हैं किंतु वह घटित नहीं होता। उन्होंने क्या कहा था काल इतना इतना एकदम बढ़ता है या क्षेत्र इतने इतने बढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। काल तो एक एक समय से ही बढ़ता है, आवली के असंख्यात विभाग से गुणा करके नहीं बढ़ता है, क्योंकि यहां हम पूछते हैं पूर्व व्याख्यान में कहे हुए अध्वान के सदृश ही इस व्याख्यान का अध्वान है अथवा विसदृश है। अध्वान यानी काल, काल का माप जो हर एक अलग अलग ठिकाने बताया है वो पूर्व में जो कहे आए है वैसा है क्या अन्य है, ये जो अन्य मत की बात चले ना, अन्य मत यानी दूसरा मत, कितने आचार्यों का मत, वो कैसे घटित नहीं हो रहा है उसको बता रहे। उक्त दो पक्षों में समान पक्ष तो युक्त है नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर क्षेत्र और काल को असंख्यात लोकपने का प्रसंग होगा। यदि काल भी उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ेगा और द्रव्य भी असंख्यात गुना होगा, द्रव्य नहीं क्षेत्र, क्षेत्र भी बढ़ता है बहुत इतने फास्ट और काल भी बढ़ता है तो क्या होगा, दोनों उत्कृष्ट देशावधि तक दोनों ही असंख्यात लोग इतने हो जाएंगे। काल असंख्यात लोग कैसा होगा, नहीं नहीं वो काल को भी लोक में गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। मेरा प्रश्न क्या है, जैसे क्षेत्र हम लोक में नापेंगे तो काल को लोक में नाप, बराबर है, लोक में जितने प्रदेश है उतनी संख्या समयों की अगर हम कहते हैं तो काल के लिए भी लोक यह माप हो सकता है। क्षेत्र को बताना है तो लोक में जितने प्रदेश है उतना लोक, वो तो आसान है समझने के लिए, परंतु जैसे हम काल मापते हैं तो आवली में मापते हैं, पल्ले में मापते हैं, वैसे अंगुल और लोक में भी काल माप सकते हैं, क्योंकि वहाँ प्रदेशों की संख्या न लेते हुए कालों की समयों की संख्या लेनी है, बराबर है ना। हाँ, वह इस प्रकार से ये कैसे झूठी साबित होगा और असंख्यात लोक कैसे होगा उसको अभी बता रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था, एक एक बार कितना बढ़ता है आवली का असंख्यात भाग, ऐसे बढ़ते बढ़ते एकदम असंख्यात लोक ऐसा हो जाएगा, तो उसके लिए वो उसका क्या हो सकता है ये बता रहे। देखो यह क्षेत्र और काल दोनों में अवली का असंख्यात भाग ही लिया था, हा? पहले जो हमने अंगुल का बात वो ये नहीं, ये द्वितीय मत प्रस्तुत कर रहे हैं और वो कैसे नहीं घटित होता है उसको बता रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं आवली के असंख्यात भाग के चाहिए अर्धच्छेदों से, क्या असंख्यात भाग अर्धच्छेदों से रहने दो, आवली या असंख्य यदि भाग छेदन ए ही लोक के अर्धच्छेदों को भाग के ही चाहिए ना, आवली याय असंख्य यदि भाग छेदन ये ही लोग छेदन ये, भाग के चाहिए आवली के असंख्यात वे भाग के अर्धच्छेदों से, अभी तो पेंसिल से देखते हम, लोग के अर्धच्छेदों को अपवर्तित करके प्राप्त राशि का विरलन कर, अभी जो राशि आ जाएगी ना उसको विरलन करके प्रत्येक रूप के प्रति गुणकार रूप गुणकार भूत आवली का असंख्यात भाग देना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, आवली का असंख्यात भाग, आवली का असंख्यात भाग, आवली का असंख्यात भाग, ऐसे कितने बार लिखना है, लोक के अर्धच्छेद प्रमाण उसमें से माइनस करना, वो कुछ कौन से आवली के अर्धच्छेद माइनस करना, क्यों लिखा, क्योंकि वो डिवाइडेड है ना, तो डिवाइडेड में उतने कम हो जाएंगे, इतने आपस में गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, देखो विरलन मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर अवधि का क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण होता है, क्योंकि विरलन मात्र आवली के असंख्यात भागों को परस्पर गुणित करने पर लोक की उत्पत्ति होती है। आवली का असंख्यात भाग, अवली का असंख्यात भाग, अवली का असंख्यात भाग गुणा करते 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 करते, अभी हमने जो देखा था ना, लोक के जितने अर्धच्छेद है उसमें से वो आवली का अर्धच्छेद का उससे भाग दो और उतनी बार आपस में गुणा करो तो असंख्यात लोक उसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पल्लोपम के असंख्यात्वे भाग अधवान में ही अवधि क्षेत्र असंख्यात लोकमात्र हो गया है। यानी काल कितना पल्ल के असंख्यात्वे भाग, और उतने ही काल में क्षेत्र असंख्यात लोक हो गया। इससे ऊपर जाने पर स्वयमेव क्षेत्र को असंख्यात लोकपने का प्रसंग आवेगा, और यह इष्ट नहीं है, क्योंकि देशावधि का उत्कृष्ट कितना है, क्षेत्र एक लोक ही है, असंख्यात लोक नहीं है। क्योंकि उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र लोक मात्र है ऐसा स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार काल के भी असंख्यात लोकपने के प्रसंग की प्ररूपणा करनी चाहिए। काल में उल्टा, इतना क्षेत्र में इतना काल बढ़ता है तो इस तरह से करेंगे तो वो भी असंख्यात लोक हो जाएगा, और देशावधि का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है ऐसा अभीष्ट नहीं है। कितना है हमने जाना है, एक समय कम पल्ल्य, क्योंकि आचार्य परंपरागत उपदेश से देशावधि का उत्कृष्ट काल एक समय कम पल्ल्य प्रमाण सिद्ध है। ये जो द्वितीय पक्ष प्रस्तुत किया था वो घटित नहीं हो रहा है, ये बात इससे सिद्ध होती है। द्वितीय असमान पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि पूर्वोक्त अधवान से अधिक अधवान स्वीकार करने पर पूर्वोक्त दोष का प्रसंग आवेगा। यदि पल्लोपम के असंख्यात्वे भाग मात्र क्षेत्र विकल्पों को स्वीकार करे तो वह भी नहीं बनता। यदि कोई कहे क्षेत्र विकल्प इतने ज्यादा नहीं है, पल्ल के असंख्यात्वे भाग इतने ही उसके विकल्प है, अलग अलग भेद है, तो वो भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर देशावधि के असंख्यात लोकमात्र क्षोभम विकल्पों के अभाव का प्रसंग होगा। वो स का ग करना, प्रसंग होगा। नीचे से दूसरी लाइन में प्रसंग लिखना बराबर। क्या कहते हैं, देशावधि के कितने विकल्प होते हैं ये तो निश्चित है। ये क्या कह रहे कि पल्ले के असंख्यात विभाग इतना ही मानो तो ये घटित होगा, क्योंकि हर बार उसने आवली के असंख्यात विभाग इतना बढ़ाया उसमें, तो ऐसा हो नहीं सकता। पल्ले के असंख्यात विभाग इतने ही विकल्प नहीं हो सकते। क्यों? देशावधि के विकल्प कितने बताए हैं? हाँ, तो कहते असंख्यात लोग कितने हैं, तो उसके आगे क्या लिखा, क्षोभम विकल्प है। क्षोभम विकल्प का अर्थ है क्या? अवधि ज्ञान के विकल्प, विकल्प है भेद। अवधि ज्ञान का भेद क्षोभम की अपेक्षा से बताए। ज्ञानावरण का इतना क्षोभम है तो इतना अवधि ज्ञान है, ज्ञानावरण का और कुछ क्षोभम है अन्य प्रकार का तो उसमें ये प्रकार का अवधि ज्ञान है। उसी को तो हमने अवधि ज्ञान के विकल्प कहा, उसी को यहाँ क्षोभम के विकल्प कहा। क्षोभम विकल्प शब्द नहीं आया तो कोई अन्य की बात हो रही वो नहीं है। क्या कहते फिर इसको, देशावधि के भेद कितने हैं, असंख्यात लोक है उतना ही बताना चाहते हैं। देशावधि के भेद है असंख्यात लोक, और ये कह रहे हैं कि आप पल्ले के असंख्यात विभाग ही मानो तो हमारा कहना सिद्ध होगा, तो ये तो विरुद्ध हो गया ना सूत्र से और आचार्य के उपदेश के, विरुद्ध हो गई बात, तो ये घटित नहीं होता। तथा काल के आवली के असंख्यात विभागत्व का प्रसंग भी होगा। यदि हम क्षेत्र के विकल्प पल्ले के असंख्यात वे भाग इतने ही मानेंगे तो काल के विकल्प और उससे कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है जब वो लोक तक बढ़ता है तब ये पल्ले तक बढ़ता है। यदि उसको ही पल्ले के असंख्यात वे भाग तक क्षेत्र के विकल्प मानेंगे तो काल तो आवली का असंख्यात वा भाग इतना ही बढ़ेगा, तो वो भी घटित नहीं होता। दूसरी बात यह है कि क्षेत्र और काल के क्षोभम असंख्यात गुणित क्रम से देशावधि में अवस्थित नहीं है। क्या कहता फिर से, क्षेत्र और काल के क्षोभम, यानी क्षेत्र की अपेक्षा जो अलग अलग क्षोभम है, यानी क्षेत्र की अपेक्षा देशावधि के जो विकल्प है और काल की अपेक्षा जो देशावधि के विकल्प है वो असंख्यात गुणित क्रम से देशावधि में अवस्थित नहीं है, वो अलग अलग है ना। प्रथम कांडक का प्रोपोर्शन क्षेत्र और काल का विशिष्ट है, दूसरे कांडक में विशिष्ट है, तीसरे चौथे पांचवें कांडक में विशिष्ट है, तो उसी प्रोपोर्शन में वो नहीं बढ़ता है। क्षेत्र का विकल्प बहुत ज्यादा होने पर काल एक एक समय बढ़ता है, तो विशिष्ट पोजीशन पर विशिष्ट क्षेत्र और विशिष्ट काल है, वो सेम उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ये दूसरा मत क्यों नहीं ठीक बैठता उसकी बात यहां हो रही है, इसीलिए हमने जो पहले जाना था उसी को फिर दोबारा बता रहे। देखो ये हमने यहां जो 15 नंबर का लिखा है वही हमने 5 नंबर के गाथा में देखा था, 24 पृष्ठ पर वही गाथा है, तो इसको फिर दोबारा प्रस्तुत किया ये समझने के लिए। हा? देखो फिर हम पढ़ेंगे इस गाथा को वहां वही। हाँ, अंगुल पृथक तो ये आवली एक है। देखो अंगुल मावली आए भागम संखे जदो विसंखे चा, अंगुल मावली अंतो आवलियम चांगुल पुदत्तम। प्रथम कांडक में जघन्य देशावधि का क्षेत्र अंगुल का असंख्यात्वा भाग और जघन्य काल आवली का असंख्यात्वा भाग है। इसी कांडक में ने पहले कांडक में ही उत्कृष्ट क्षेत्र और काल क्रमशः अंगुल और आवली के संख्यात्व भाग प्रमाण है, यानी अंगुल का संख्यात्वा भाग और आवली का संख्यात्वा भाग। तीसरे कांडक में दूसरे की बात आई क्या? दूसरे की बात लिखी नहीं। तृतीय कांडक में क्षेत्र अंगुल पृथक्त्व और काल आवली प्रमाण होता है। चौबीस में द्वितीय लिखा है। हाँ, अभी यहाँ 24 पृष्ठ पर जो लिखा है ना उन्होंने, द्वितीय कांड में क्षेत्र घनांगुल और काल कुछ कम आवली प्रमाण, ये यहाँ लिखा नहीं है, वो लिख लेना जो 24 पृष्ठ पर है ना, 24 पृष्ठ का रेफरेंस यहाँ लिखना। वो रह गया यहाँ द्वितीय कांडक में, देखो 24 पृष्ठ पर क्या लिखा था वो द्वितीय कांडक में, वो रिपीट करना। द्वितीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल प्रमाण, काल कुछ कम आवली प्रमाण है, ये वहां से रह गया था वो यहां हम ऐड कर दिया। तृतीय कांडक में क्षेत्र अंगुल पृथक्त्व और काल आवली प्रमाण है इत्यादि वर्गणा के गाथा सूत्रों के साथ विरोध होगा। ये जो दूसरा मत प्रस्तुत किया था वो क्षेत्र इतना बढ़ता है तो और काल इतना बढ़ता है, काल एक एक समय से बढ़ता है ऐसा नहीं कहा, काल भी आवली के असंख्यात विभाग से बढ़ता है और क्षेत्र भी आवली के असंख्यात विभाग से बढ़ता है ऐसा बताया था ना, तो वो घटित नहीं होता। इस प्रकार अवधि ज्ञान की प्ररूपणा की गई है। अब इससे आगे की जो चर्चा है वो हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो सदा।